HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
जब कोई भी इंसान क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनता है तो उसके मन में बहुत ही सारे क्वेश्चंस, बहुत ही सारे एप्रीहेंशंस और बहुत ही डर भी होता है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी सारी टीम्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और उनके फाउंडर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये सारी टीम्स, ये सारे फाउंडर्स एनोनिमस भी हो सकते हैं एंड इस वजह से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी अर्ली एडॉप्टर्स हैं वो थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज रखते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी फाउंडर या टीम को पर्सनली नहीं जानते तो आप किसी पे कैसे ट्रस्ट करेंगे। क्रिप्टोकरेंट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्सिंग के ऊपर। डॉक्सिंग क्या होती है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या ये एक सॉल्यूशन है क्रिप्टो में ट्रस्ट बढ़ाने का। तो चलिए शुरू करते हैं समझने से कि डॉक्सिंग होता क्या है। डॉक्सिंग का मतलब होता है ड्रॉपिंग योर डॉक्स। इसका मतलब कोई भी फाउंडर या कोई भी टीम मेंबर या कोई भी प्रोजेक्ट ओनर या वीसी इन्वेस्टर जिसने उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करा है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करे किसी ऑनलाइन फोरम में या वेबसाइट में जहां पे जनरल पब्लिक उस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकती है। डॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी एनोनिमस प्रोजेक्ट ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो आगे आकर बताएं कि हम XYZ प्रोजेक्ट के फाउंडर्स हैं और हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो सुनने में तो डॉक्सिंग बहुत अच्छा लगता है, बट अब बात करते हैं कि डॉक्सिंग के प्रोस और कॉन्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स के ऊपर चलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्रिप्टोकरेंसी के अंदर हैकर्स काफी एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली पीछे एक $190 मिलियन भी हैक हुआ एंड हैक्स इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो। ये चीज धीरे धीरे हर इंसान समझने लगा है। हैकर्स कैसे काम करते हैं ये चीज थोड़ा बेटर समझते हैं। हैकर्स बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करते हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन आपका वॉलेट एड्रेस हो सकता है, सीड फ्रेज हो सकता है या अदर पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो आपने रिवील करी है। क्योंकि हैकर्स बहुत ही एक्टिव होते हैं और नॉर्मली दो चार कदम हमसे आगे ही होते हैं, काफी प्रोजेक्ट ओनर्स, फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स डरते हैं कि अगर हैकर्स को पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट के पीछे वो हैं तो वो हैकिंग का टारगेट हो सकते हैं और इसी वजह से वो डॉक्सिंग नहीं चाहते। क्योंकि उनका लेजिटिमेट फियर ये है कि अगर वो हैकर की हिट लिस्ट पर हैं तो हैकर डेफिनेटली ट्राई करेगा कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सके और आगे जाके उन्हें ब्लैकमेल कर सके या मे बी वो उस प्रोजेक्ट को टारगेट करके उसके फंड्स को स्टील करने की कोशिश करे। तो ये सबसे बड़ा कॉन है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट ओनर्स नहीं चाहते कि वो डॉक्स करें खुद को। सेकेंडली, बहुत सारे हैकर्स के अलावा बैड एक्टर्स भी होते हैं जो क्रिप्टो स्पेस का नाम खराब करते हैं, जिसमें नॉर्मली स्कैमस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स और ये सारे लोग आते हैं। ये सारे लोग भी काफी बार फेसलेस और नेमलेस होते हैं और क्योंकि ये ऐसे रहते हैं इस वजह से क्रिप्टो कम्युनिटी को बहुत ही खराब नेम मिलता है। बहुत ही कॉमन मीम है कि अगर एक हॉट लड़की आपसे इंस्टाग्राम पे पूछे कि आपके पास कितने बिटकॉइन है, देन डोंट रिप्लाई टू हिम। यानी जितने भी स्कैमस्टर्स वगैरह होते हैं वो ऐसी टैक्टिक्स ढूंढते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं जिससे वो आपको हैक कर सके या आपके साथ कोई स्कैम कर सके या कोई फ्रॉड कर सके। इसका कॉमन एग्जाम्पल है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज होती है जहाँ पे लिखा होता है कि एलॉन मस्क को अगर आप 0.1 BTC भेजेंगे तो एलॉन मस्क आपको 0.2 BTC वापस भेजेगा, अगर आप विटालिक को 10,000 शिबा इनू कॉइंस भेजेंगे तो विटालिक 20,000 शिबा इनू कॉइंस वापस भेजेगा, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 5,000 पीपल। इसके अलावा सस्पिशियस लिंक्स भेजना, फ्री गिवअवेज के विनर्स या फ्री NFTs एयर ड्रॉप करना कुछ और स्ट्रेटजीज हैं जो स्कैमस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं। तो डॉक्सिंग का एक नुकसान ये भी है कि अगर कोई इंसान कोई स्कैम कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई रकपुल कर रहा है उसको आप कभी पकड़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास उसकी कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। थर्डली, क्योंकि क्रिप्टो में लोग आते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बाद में आते हैं बट मैक्सिमम लोग प्रॉफिट फर्स्ट के लिए आते हैं, तो उनका ट्रस्ट बनता है जब वो टीम मेंबर्स को साथ में देखते हैं, जब वो फाउंडर्स की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और उनका पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। अगर हम इक्विटी मार्केट्स का सोचें तो इक्विटी मार्केट्स में ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी होती है कि आप मैनेजमेंट टीम, फाउंडर टीम, प्रोमोटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शेयर होल्डर्स के बारे में रिसर्च करके, उनका बैकग्राउंड चेक करके, ट्रैक रिकॉर्ड देख के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, काफी सारे लोग स्केप्टिकल होते हैं और मेरी आज तक जितने बड़े इन्वेस्टर्स से बात हुई है वो भी अभी तक इसलिए स्केप्टिकल हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में एंटर ही नहीं करना चाहते। तो डॉक्सिंग ना करने का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि काफी सारा पैसा ऑन द लाइंस है जो वेट कर रहा है कि अगर फ्यूचर में डॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं लोग या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं देन वो ये पैसे को क्रिप्टो में लगाना चाहेंगे। अब इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सतोशी नाकामोटो, जिसने बिटकॉइन बनाया। बहुत सारे लोग बिटकॉइन पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बिटकॉइन के फाउंडर के बारे में ही नहीं पता। उन्हें ये लगता है कि बिटकॉइन बनाने वाला हो सकता है कोई चाइनीज एजेंट हो, या हो सकता है चाइनीज गवर्नमेंट हो, या हो सकता है यूएस गवर्नमेंट खुद हो, या एक्स वाई जी। इंटरनेट पे इसके ऊपर काउंटलेस थ्योरीज हैं, बट पॉइंट ये है कि लोग क्योंकि सतोशी नाकामोटो को नहीं जानते, इस वजह से वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते। और अगर हम इसी लॉजिक से चलें तो इस तरीके से गोल्ड या सिल्वर का भी कभी किसी को कोई फाउंडर नहीं पता। हमें बस ये पता है कि गोल्ड और सिल्वर अर्थ पे भी पाए जाते हैं, और जो मीटियोर शावर या एस्टेरॉइड्स अर्थ को हिट करते हैं उनसे भी निकलते हैं। और रिसेंटली एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन मिली भी है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड मिला है। बट सेम लॉजिक क्योंकि क्रिप्टो में ऑलरेडी बहुत सारे स्कैम्स हो चुके, यहाँ अप्लाई नहीं करा जा सकता। और ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है बहुत सारे लोगों का कि क्योंकि उन्हें फाउंडर की आइडेंटिटी नहीं पता, इन दिस केस बिटकॉइंस फाउंडर सतोशी नाकामोटो, तो वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बट ये सारी तो बात हुई डॉक्सिंग के डिसएडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डॉक्सिंग के एडवांटेजेस की। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर फाउंडर्स अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, अगर वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो उनका ट्रस्ट डेवलप होगा। ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अगर एक फाउंडर ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो वो पब्लिकली अकाउंटेबल भी होगा फ्यूचर प्रोग्रेस और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। जो अगर हम करेंट प्रोजेक्ट्स देखें जहां पे टीम्स डॉक्स्ड हैं, वहां पर ऐसा हर बार नहीं होता। यानी आप ये मान सकते हैं कि शायद 10 में से 5 प्रोजेक्ट्स की टीम्स अगर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रही हैं, तो भी हो सकता है कि वो अपने रोड मैप पे मेंशन सारे गोल्स को हिट ना कर सकें। इसका रीजन हो सकता है डिले इन डेवलपमेंट, लैक ऑफ फंड्स, या शायद लैक ऑफ इन्वेस्टर्स। बट पॉइंट ये है, डॉक्सिंग करने से ये आप इंश्योर नहीं कर सकते कि क्या फाउंडर्स अपने गोल्स को हिट कर पाएंगे या नहीं। सेकेंडली, यहाँ पे आप उनका बिहेवियर भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है आज एक फाउंडर अपने आप को डॉक्स कर दे, बट उसकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जहां पे वो अगले 6 महीने प्रोजेक्ट में काम ना कर सके। और क्योंकि अगर प्रोजेक्ट की टीम में फाउंडर ही काम नहीं कर रहा, तो बाकी टीम के लिए भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज को मेलिशियस इंटेंट मान लेते हैं। उनको लगता है कि फाउंडर जानबूझ के काम नहीं कर रहा और वो पैसे लेकर भाग गया। इन अ लॉट ऑफ केसेस काफ़ी सारे फाउंडर्स जिस तरीके से प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, इनिशियली तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट विथ टाइम उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये प्रोजेक्ट डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है, और इस वजह से वो प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करते। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करते, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ देम एज इनकॉम्पिटेंट, जनरल पब्लिक सोचती है कि इनका भी कोई मैलिशियस इंटेंट होगा। इन फैक्ट वन ऑफ माई मेंटर्स हैज पुट इट इन द बेस्ट वे, दैट मैलिशियसनेस एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफन लुक्स आइडेंटिकल। In fact, one of my mentors has put it in a very right way, that maliciousness and incompetence often looks identical. तो अगर किसी ने अपनी information share करी और उसके बाद वो कोई goal hit नहीं कर पाया या उस project को वहां तक नहीं लेके जा पाया जहां तक आप expect कर रहे थे, जरूरी नहीं कि उसका कोई खराब intent हो। हो सकता है कि वो incompetent था, या उसकी personal life में कोई situation आ गई, या maybe जिस तरीके से उसने plan create करा था वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डॉक्सिंग क्रिप्टो में करेंटली एक बैंडेड की तरह काम कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टो का कोर है डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टो पूरे वर्ल्ड को ऑफर करता है एनोनिमिटी एंड वर्क फ्रॉम होम, एंड एट द सेम टाइम टू वर्क फ्रॉम एनी प्लेस एंड बिल्ड इन अ कम्युनिटी जहां पे सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स हैं। यही चीज बहुत सारे फाउंडर्स को, डेवलपर्स को और ब्लॉकचेन एंथुजियास्ट को एनकरेज करती है कि वो क्रिप्टो में अपना करियर बनाए। और क्योंकि एनोनिमिटी इज अ ह्यूज थिंग, इस वजह से बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं। और अगर हम टीम्स को ही फोर्स करना स्टार्ट करेंगे कि आप एनोनिमस हो जाओ, तो बहुत सारे फाउंडर्स चूज करेंगे कि वो प्रोजेक्ट को शायद बिल्ड ही ना करें, क्योंकि उनके लिए उनकी प्राइवेसी और उनकी एनोनिमिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर क्रिएटिंग। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट में, बैंक्स में और रेगुलेटरी अथॉरिटीज में हम ट्रस्ट मेंटेन करते हैं क्योंकि वहां पे सेंट्रलाइज बॉडीज हैं। अगर आप अपने SBI बैंक में जाके कैश निकालते हैं तो आप कभी ब्रांच मैनेजर से नहीं बात करते, आप उस इंसान से जो काउंटर पे बैठा है उससे बात करते हैं, क्योंकि आपका करंट बैंकिंग सिस्टम में एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड है। और अगर आपने OMG मूवी देखी है तो वहां पे परेश रावल भी एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके घर में लाइट जाती है तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी को फोन नहीं करते, आप आसपास के इंसान को फोन करते हो कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं जो ट्रस्ट मेंटेन करें, वहां पर हम किसी भी इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड अगर हमारा ट्रस्ट वायलेट होता है तो इनके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट भी होगी। बट क्योंकि क्रिप्टो स्पेस नया है, ये ट्रस्टलेस है और यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पनिशमेंट्स काफ़ी कम हैं। जी हाँ, बहुत सारी कंट्रीज बात कर रहे हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, वो साथ के साथ स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर लेकर आएं, पनिशमेंट्स लेकर आएं, फाइंस लेकर आएं, बट ये सारा अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स ये सारी चीज़ें आएंगी और प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट करना, बट इफ़ यू आस्क मी ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो चाहे अपने आप को डॉक्स ना करना चाहें, बट अगर उन्हें पता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली डेवलप कर सकें और डिलीवर कर सकें अपने प्रोमिसज के ऊपर। फाइनली हम बात करते हैं एक रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एक रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप कुछ NFTs कलेक्ट करना चाहते हैं और उनमें से कुछ NFTs शायद बहुत वैल्यूएबल या बहुत प्रीमियम और बहुत रेयर हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड को पता हो। या अगर आपके वॉलेट में 10 बिटकॉइन पड़े हैं जो आपने 2012-13 में माइन करे या शायद 15-16 में खरीद लिए, यानी बहुत ही सस्ते में खरीद लिए, तो आप नहीं चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि 10 बिटकॉइन आपके पास हैं, क्योंकि हम पहले भी ऐसे एग्जांपल्स देख चुके जहां पे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी, रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड आई, और उनको टारगेट किया गया हैकर्स के थ्रू या इवन स्कैमस्टर्स वगैरह के थ्रू, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा लूज करा, अपने क्रिप्टो एसेट्स लूज करे, और वो इन सारे टेक्निक्स इन सारे हैक्स का शिकार हुए। अगर आप एक बिग सेलिब्रिटी हैं तो भी आप डॉक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने और अपने फैमिली को रिस्क पे डाल रहे हैं। या अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पूरा बन और बिगड़ सकता है आपके डॉक्सिंग की वजह से। सो दिस इज हाउ आई सी डॉक्सिंग इन क्रिप्टो। मुझे ऐसा लगता है क्रिप्टो में डॉक्सिंग नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फाउंडर आके आपसे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए या मान लीजिए वीडियोस वगैरह डाले, वो चीज़ बिल्कुल लेजिट है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि आज भी अगर हम क्रिप्टो में देखें तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ही ट्रस्ट करते हैं जहां रेगुलर अपडेट्स आती हैं, जहां रोड मैप फॉलो किया जाता है, जहां पे रेगुलर AMAs होते हैं, लाइव्स होते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट जाता है, और साथ के साथ उन्हें लेजिट इवेंट्स और मीटअप्स भी कराने पड़ते हैं। बट काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज ये सब करने के बाद भी फेल हो जाती हैं और लोग उन्हें मेलिशियस इंटेंट वाली कंपनीज मानते हैं, रादर देन सीइंग देम एज कंपनीज शायद जिन्होंने जेन्युइनली ट्राई करा बट दे वर नॉट एबल टू हिट द सक्सेस बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर। सो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट डॉक्सिंग। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि आप लोग डॉक्सिंग को किस तरीके से देखते हैं। अगर आपके पास डॉक्सिंग से रिलेटेड कोई भी आइडियाज हैं या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। बट मैं मिलूंगा आपसे अब क्रिप्टो करेंट के नेक्स्ट एपिसोड में।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल। HT Smartcast।